लगभग 5 दशक पहले 1968 में श्री सत्य साई सेवा संगठन के प्रथम विश्व सम्मेलन में भगवान प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत से भक्त मुझसे उन्हें संदेश देने की विनती करते हैं। आज मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। भगवान ने अपने इस अवतरित जीवन काल में अपना संदेश न केवल दिया अपितु उसे स्वयं के आचरण में जीकर दिखाया। भगवान का बाल्यकाल किस प्रकार का था, उनकी बाल लीलाएं कैसी थी, उनकी वास्तविक दिव्य शक्ति क्या है, आइए अब हम सब इस साई भागवत का श्रवण करें।
ओम श्री साई राम। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर प्रेम है। भगवान श्री सत्य साई बाबा विशुद्ध प्रेम के अवतार हैं और बचपन से ही उन्होंने मानवता को निःशर्त व निस्वार्थ प्रेम करने का संदेश अपने जीवन की सभी घटनाओं से दिया है। 23 नवंबर सन 1926 दिन था कार्तिक मास का सोमवार। भगवान शिव की आराधना का दिन और वर्ष था अक्षय। अक्षय अर्थात वह जिसका कभी विघटन नहीं होता। प्रभात के समय जब पुटपर्ती गांव के वासी भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यस्त थे, एक अति मनमोहक बालक ने जन्म लिया। बालक के बाईं गाल पर तिल, विशाल मस्तक, तेजस्वी चेहरे पर दिव्य मुस्कान थी, जो देखता बस देखता ही रह जाता। भगवान बाबा की परम भक्त डॉक्टर जयलक्ष्मी उस समय को याद करते हुए कहती हैं,
मैं भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की एक सुंदर फोटो लेकर माँ ईश्वराम्मा के पास गई। फोटो में बालकृष्ण माखन की मटकी के पास बैठे माखन खा रहे थे। माँ ईश्वराम्मा उस फोटो को देखकर बोली, हाँ मेरे बालक का चेहरा भी कृष्ण की तरह ही तेजस्वी था। बाल घुंघराले थे, कंधे मजबूत और बलिष्ठ थे, पर कृष्ण की तरह हम उसे हीरे मोतियों के गहने नहीं पहना सके। हम तो गरीब लोग थे
जो केवल अपनी इच्छा शक्ति से पूरे पर्वत के पत्थरों को मोती बना सकता है। उसने अपने जन्म के लिए पत्थरों और घास फूस से बनी झोपड़ी को चुना। बालक के पिता पेद्दा वेंकम्मा राजू बांस और घास फूस से बने एक झोपड़ी नुमा घर में रहते थे। घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में अनाज रखा रहता था और एक कमरा रहने के काम आता था। एक छोटा सा आंगन और एक रसोई थी। ऐसा घर था जिसके आंगन में बालक सत्या का बचपन बीता। माँ ईश्वरम्मा कहती हैं कि सत्या के मुख पर सदा मनमोहक मुस्कान बनी रहती थी। वो कभी रोते ही नहीं थे। सत्या ने कभी किसी विशेष भोजन या वस्त्रों की चाह नहीं की। हिंदूपुर या अनंतपुर से कपड़ों की पोटली आती थी। पिताजी या दादाजी सभी बच्चों को अपनी अपनी पसंद के कपड़े चुनने को कह देते। सभी बच्चे अपनी पसंद के कपड़े चुन लेते थे। सत्या बचे हुए कपड़े लेकर ही खुश हो जाते। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। दूसरों को प्रसन्न देखकर ही उन्हें सुख मिलता था। उस समय को याद करते हुए माँ ईश्वरम्मा कहती हैं, मैं सत्या को अपने पास बुलाकर प्यार और दुलार से पूछती थी, सत्या तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी। सत्या का एक ही उत्तर होता, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे जो भी देंगी मैं उसी से संतुष्ट हूं, मेरी अपनी कोई पसंद या नापसंद नहीं है। सत्या के ऐसे उत्तर से माँ ईश्वरम्मा उदास हो जाती। परंतु उन्हें क्या पता था कि जो सदा दूसरों के सुख और कल्याण में लगा रहता था वो अपने सुख और आराम के बारे में कैसे सोच सकता था। इसी को तो सच्चा और शुद्ध प्रेम कहते हैं। शुद्ध प्रेम दूसरों को देने में है, लेने में नहीं। बांटने में है, छीनने में नहीं, बिखेरने में है, अपने लिए जमा करने में नहीं। जब भी कोई भिखारी द्वार पर आवाज लगाता तो सत्या सारे काम छोड़कर बहनों को भिखारी को कुछ भोजन देने के लिए मनाने लगते थे। वास्तव में घर के सभी लोग सत्या की इस तरह की दयालुता से कई बार कठिनाई भी महसूस करते थे। एक बार मां ईश्वरम्मा सत्या को डांटते हुए कहती हैं, देखो सत्या, यदि तुम इस तरह से खाना भिखारियों को दोगे तो तुम्हें खुद भूखा रहना होगा। सत्या मां की चेतावनी की परवाह नहीं करते, वो भाग कर अंदर जाते और खाना भिखारी को दे देते और खुद भूखे रह जाते। उसके बाद खाना परोसा भी जाता तो वो इसे कभी भी नहीं खाते थे। त्याग ही सच्चे प्रेम की निशानी है। अपनी इच्छाएं कम करके दूसरों के चेहरों पर खुशी लाना ही शुद्ध प्रेम कहलाता है। सत्या को गली में जब भी कोई अंधा, लूला, लंगड़ा या बीमार व्यक्ति दिखाई देता तो वो उसे अपने घर ले आते और अपनी बहनों को उन्हें अनाज या भोजन देने के लिए कहते। उन्हें खुश देखकर सत्या का चेहरा भी खुशी से चमक उठता। शुद्ध प्रेम ऐसा ही होता है। शुद्ध प्रेम निस्वार्थ रूप से भलाई करने का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देता। जब भी गांव के बच्चे किसी पशु या पक्षी को तंग करते तो सत्या को बहुत दुख होता था। जब भी कोई व्यक्ति किसी मुर्गी को पकाकर खाने की सोचकर पकड़ता तो सत्या उसे मना करते। उसके हाथों से पक्षी को लेकर प्रेम से अपने सीने से लगा लेते थे। शुद्ध प्रेम घृणा और हिंसा को समाप्त करके केवल प्रेम की गंगा बहाता है। स्कूल में लेट आने वाले छात्रों को बेंत मारकर सजा दी जाती थी। समय पर पहुंचने वाले छात्रों को लेट आने वाले छात्रों के हाथ पर बेंत मारने को कहा जाता था। ये देखकर सत्या को बहुत दुख होता था। सर्दियों के दिनों में सजा से बचने के लिए बच्चे बहुत जल्दी ही स्कूल आ जाते थे। उन्हें ठंड से कांपते देख सत्या उनके लिए अपने घर से कपड़े आदि लाकर उन्हें पहनाते थे। ये देखकर घर वालों ने अच्छे अच्छे कपड़ों को पेटी में डालकर ताला लगा दिया। परंतु सत्या बच्चों की मदद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते थे। शुद्ध प्रेम दूसरों को मुश्किल से बाहर निकालने और उनके दुख को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। पुट्टपर्ती और कमलापुरम में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लेने के बाद सत्या को 4 किलोमीटर दूर बुक्कापट्टनम पैदल जाना पड़ता था। रास्ते में कुछ शरारती बच्चे सत्या के घने बालों में कांटेदार गोले चिपका देते थे, परंतु सत्या ने उन पर कभी गुस्सा नहीं किया। शांत रहकर कष्ट को सहन कर लेते थे। 14 वर्ष के सत्या प्रातः स्कूल जाने से पहले बहुत जल्दी उठ जाते थे। अपना और अपने दादाजी का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाते, उसके बाद तैयार होकर पैदल स्कूल जाते। स्कूल में सत्या को सभी अध्यापक बहुत चाहते थे, उनसे प्रेम करते थे। ये देखकर कुछ लड़के सत्या से ईर्ष्या करते थे। वे उन्हें तंग करते थे, उन पर रेत और पानी फेंककर उनके कपड़े गंदे कर देते थे। परंतु सत्या उनके प्रति कभी दुर्भावना नहीं रखते थे। उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते थे, उन्हें अपना मित्र समझते थे। सत्या अपनी क्लास के सबसे अच्छे विद्यार्थी थे। वे क्लास के मॉनिटर थे। एक बार सत्या सारी क्लास में से अकेले घर का काम पूरा करके आए थे। बाकी 40 बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। अध्यापक ने सत्या को क्लास के उन 40 बच्चों को एक एक थप्पड़ मारने को कहा। सत्या ने उन सबको थप्पड़ मारने के बजाय उनके चेहरों को केवल हल्के हाथ से छू दिया। इस पर अध्यापक को सत्या पर गुस्सा आ गया। अध्यापक ने सत्या को जोरदार 41 थप्पड़ मारकर बताया कि थप्पड़ कैसे मारे जाते हैं। सत्या ने अध्यापक की सजा को धैर्यपूर्वक सहन कर लिया। वास्तव में सहनशीलता, अदम्य सहनशीलता सच्चे प्रेम का एक विशेष गुण है। बुक्कापट्टनम के बाद सत्या उर्वाकुंडा में अपने भाई शेषम राजू के घर रहने लगे। यहां उन्हें एक बड़ा ही कष्टदायक और कठोर जीवन जीना पड़ा। उन्हें सारे परिवार के लिए पानी ढोकर लाना पड़ता था। इस कारण उनका बायां कंधा कठोर होकर काला पड़ गया था। इसी दौरान एक बार सत्या जब अपने घर पुट्टपर्ती आए तो मां ईश्वरम्मा ने उनके सारे शरीर की तेल मालिश की। मालिश करते समय मां ने देखा कि सत्या का बायां कंधा काला पड़ गया है और काफी कठोर हो गया है। मां ने सत्या से पूछा, तुम्हारा कंधा इस तरह काला क्यों है? उत्तर में सत्या केवल मुस्कुराए, परंतु मां के बार बार पूछने पर सत्या को बताना ही पड़ा कि ये निशान पानी को ढोने के कारण पड़ा है। भाई के परिवार और उनके दो पड़ोसियों के लिए उन्हें दिन में 6 बार दूर कुएं से कंधे पर पानी ढोकर लाना पड़ता था। मां ने कह दिया, सत्या तुम वापिस घर आ जाओ, वे लोग तुम्हारी भलाई का अनुचित फायदा उठाकर तुम्हारा शोषण कर रहे हैं, उन्हें अपने घर के लिए पानी स्वयं लाना चाहिए। सत्या ने कहा, मां मैं ये सेवा अपना कर्तव्य समझकर करता हूं। मैं नहीं चाहता कि परिवार में लोग खारा पानी पिएं। मैं खुशी खुशी कुएं से मीठा पानी ढोकर लाता हूं। मैं सबकी सेवा करने के लिए ही तो आया हूं। सत्या का उत्तर सुनकर मां ईश्वरम्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी को कहते हैं सच्चा और शुद्ध प्रेम। स्वयं को कितनी भी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े, परंतु दूसरों को सुख देने में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। श्री सत्य साई के जीवन का कोई भी पृष्ठ खोलकर आप देख लें, आपको सत्य साई के प्रेम रूपी हीरों के असंख्य चमकते रंग और रूप दिखाई देंगे। सन 1989 के जन्म दिवस संभाषण में स्वामी ने कविता के माध्यम से पुटपर्ती के महत्व और अपने अवतारी मिशन पर प्रकाश डालते हुए कहा, पुटपर्ती समस्त विश्व का केंद्र है, जहां आत्मा स्वरूप भगवान ने अवतार लिया है। विश्व भर के नेक और भले लोग हजारों हजारों की संख्या में यहां इकट्ठे होते हैं, क्योंकि यहां उन्हें असीम सुख, शांति और आनंद मिलता है। श्री सत्य साई बाबा ने विश्व को प्रेम और सभी धर्मों के मूल तथ्य की शिक्षा देने के लिए यहां अवतार लिया है। प्रेम अवतार श्री सत्य साई बाबा ने सभी को प्रेम से गले लगाकर उनके हृदयों को परम आनंद से भर दिया है। शुद्ध प्रेम के अवतार साई बाबा ने अपने 86 वर्ष के शरीर रूपी जीवन काल में हमें शुद्ध प्रेम का मार्ग दिखाया है। उनका जीवन ही उनका संदेश है, और संदेश ये है कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो। जय साईं राम।